मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सीता की सोने की मूर्ति बननी है, राम के मन में मस्तिष्क में प्रश्न उगा है कि सीता के जीवित रहते सीता की मूर्ति का निर्माण क्यों, जिसे जीवन से ही त्याग दिया अब उसी की प्राण प्रतिष्ठा क्यों। पुरोहितों से प्रश्न करते हैं राम, लेकिन उन्हें वही उत्तर मिलता है जो शास्त्रीय उत्तर है, और इसके अतिरिक्त पुरोहित कोई उत्तर नहीं दे पाते कि अब पत्नी को आया। कोई पुरोहित ये नहीं कह रहा है राम से कि जो जीवित है उसकी मूर्ति की आवश्यकता क्या है, जाओ राम और अपना प्रायश्चित करो और सीता को ले आओ, साक्षात सीता को ले आओ यज्ञ में। ये कोई सुझाव नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है राम को ये सुझाव। और राम राम दे देते हैं सोना, आज्ञा दे देते हैं, राजकोष से स्वर्ण दिया जा रहा है, सीता की मूर्ति बनाई जा रही है, लेकिन राम का मन सीता की मूर्ति पर नहीं है, सीता पर ठहरा हुआ है। सीता के त्याग को 12 वर्ष बीत गए हैं। लक्ष्मण ने रोते हुए बताया था सीता के गर्भ के बारे में राम को, लेकिन राम को यह भी ज्ञात नहीं है कि सीता और उनकी संतान किस रूप में और कहां है। राम ने कई बार सीता का पता लगाने का विचार किया था, लेकिन राज मर्यादा ने उन्हें रोक लिया। मर्यादा, मर्यादा का ही दूसरा नाम है प्रथा। जो मर्यादा की रेखा होती है उसी को कहा जाता है प्रथा। कुंती का नाम भी तो प्रथा है, इसीलिए अर्जुन को प्रत्यय कहा गया, और उसी से यह शब्द बन गया कि ऐसी प्रथा चली आ रही। और जो प्रथाएं परंपराएं अपना अर्थ खो देती हैं उन्हें रूढ़ी कहते हैं, दे आर कॉल्ड मोर्सिस, द ट्रेडिशन which loses their meaningfulness, they become the modes. प्रथाएं, मर्यादाएं ये होती हैं, बहुत शुभ है, लेकिन अगर उसका अर्थ उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है तो ये मर्यादा किस काम की। सीता की खोज करने का अर्थ था राम के लिए स्वयं को कमजोर प्रस्तुत करना, जनता के सामने राज्य के सामने ये बताना कि मैं बैकफुट पर आ गया। एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अगर भावनाओं के अधीन हो जाएगा तो न्याय कैसे करेगा। राम, न्याय करते समय इसीलिए तो आंखें बंद रखी जाती है, कारण क्योंकि आंखें ही तो भावुक दृश्य देखती हैं और फैसले बदल सकते हैं। जो लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति है उसकी आंखों पर इसीलिए तो पट्टी बांधी गई है, कानून अंधा कहना नेगेटिव सेंस में नहीं पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि कानून न्याय भाव नहीं दे, तर्क दे, भाव तर्क विरोधी हैं। राम अब न्यायाधीश है, सम्राट तर्कों से बंधे हैं, मर्यादा से बंधे, राम के अंदर, क्योंकि यहां राम दो हैं, एक राम सम्राट हैं कौशल के और एक राम राम है। राम के अंदर जो मानव राम है, मेरे राम है, और जो राम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, उस राम के अंदर वैराग्य इतना बढ़ गया है कि प्रकृति कर्म को वो नियति कर्म मान करके करते हैं, लेकिन स्वकर्म की स्मृति उन्हें नहीं रहती। राम ने वाणी को इतना संयमित कर लिया है कि मेरे राम अयोध्या के राज परिवार के निवासी भी राम के मुंह से शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं। पूरे राज दरबार और राज भवन की भीड़ में राम तो वीरान के सहारे जीते हैं। देखने में राम का जीवन प्रवृत्तिमय है, राजा है, लेकिन वास्तव में उनका जीवन निवृत्ति का साकार रूप। अब आ गए हैं, राम मौजूद हैं अपने पूरे राज परिवार के साथ में नैमिषारण्य में, और इस यज्ञ भूमि में आते हैं लवी कुश। नैमिषारण्य के यज्ञ में ऋषि वाल्मीकि पधारे हैं और लव कुश को साथ लेकर के आए। वाल्मीकि ऋषि ने लव कुश को पूरी रामायण, संगीतमय रामायण सिखा दी है, और लवी कुश रामायण गाते हुए राजकीय शिविर के बाहर से निकल रहे, रामायण गा रहे हैं लव कुश। बच्चे 12-13 साल के बच्चे गा रहे हैं राम कथा, और राम कथा गाते हुए निकल रहे हैं राम के शिविर के सामने। राम के कानों में राम का नाम पड़ा, वो भी संगीत के सुरों में बंद कर, और करुण वाणी में राम ने बालकों को अपने शिविर में अंदर बुला लिया और गाकर के सुनाया। नवी कुश ने उन्हीं की कथा उन्हीं को सुनाई कि सुनो मेरे राम, मेरे पापा राम, अपनी कथा सुनो अपने ही बालकों के मुख से। राम बड़े प्रसन्न हुए। राम ने बालकों को स्वर्ण रजत देकर पुरस्कृत करना चाहा, लेकिन लव कुश ने कहा कि वे निवृत्ति मार्गी हैं, आश्रमवासी हैं, उन्हें धन की चाह नहीं, उन्हें धन की आवश्यकता नहीं, उन्होंने नहीं दे। राम बालकों से उनका परिचय जानना चाहते, लेकिन संकोच हो रहा है क्योंकि ऋषि आश्रमों में ऐसे बालक बालिकाएं भी रहते हैं जिनके पिता या माता ज्ञात नहीं होते, इसलिए राम परिचय पूछकर इन बालकों को दुखी नहीं करना चाहते। और लव कुश को देखकर राम तो जैसे समाधि से जाग उठे। राम बहुत वर्षों बाद राम को जीवन की जीवंतता के दर्शन हो गए। जीवन जीवंत हो गया है राम का इस क्षण। राम को लग रहा है कि दोनों बालकों को हृदय से लगा लें, अनंत काल के लिए हृदय से लगा लें, लेकिन राम शिविर में अभिजात वर्ग उपस्थित है, सबके सामने ऐसा करना एक राजा के लिए उचित नहीं है, राम के लिए तो उचित था, क्योंकि राम तो राजा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट के परसोना में है। और वशिष्ठ जान जाते हैं, ब्रह्मर्षि जान गए हैं गति को, नियति, इसलिए ठहर गया है जो वक्त समय का हिस्सा, उसे गति देने के लिए वशिष्ठ ने सभा विसर्जित कर दी है। इस विषय पर विस्मृत हैं सभी भद्रजन जो राम के शिविर में थे, बिना कुछ कहे चल दिए हैं अपने अपने शिविरों की ओर। प्रश्न सभी के अंदर है, लेकिन होंठ मौन है। ऐसा समय आता है जब प्रश्न होते हैं लेकिन होंठ साथ नहीं देते, होंठ मौन है, प्रश्न अनुत्तरित है सबके। जो हमारा अभिजात वर्ग है, एलीट क्लास और सोसाइटी, अभिजात वर्ग की ये विशेषता हो कि वो जल्द ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, रिएक्शन नहीं दे, और समय की प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है समय की कि जब समय आएगा तब उत्तर देगा। मानव है मेरे राम, मानव है।
नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधार घुवीर, श्रवण पुटने मन पान करी नहीं अघात मति धीर, नहीं अघात मति धीर।
मानव है मेरे राम, अब मेरे राम, अब मेरे तुम राम और वो भी मेरे राम जो नैमिषारण्य में है और अपने काष्ठ कुटीर में चले गए। जो राम का दरबार था टेम्परेरी, जहां सभा लगी हुई थी, वहां से निकले हैं राम और अपने काष्ठ कुटीर में, वुडन हाउस में चले गए। लक्ष्मण चले थे राम के साथ, लेकिन द्वार पर ठिठक गए हैं, वो देख रहे हैं राम की मनोदशा, इसलिए ठिठक गए हैं और देख रहे हैं कि राम अगर कहें तो अंदर आए, ऐसा कर रहे हैं लक्ष्मण। राम ने लक्ष्मण को अंदर आने के लिए कहा नहीं, और लक्ष्मण यज्ञ की तैयारियां देखने के बहाने यज्ञ भूमि में चले गए, अकेला छोड़ना चाहते हैं राम को लक्ष्मण कुछ समय के लिए। लक्ष्मण को कोई टोकने वाला नहीं है, बहाना तो वो किससे करेंगे, खुद से, स्वयं से बहाना किया है लक्ष्मण ने अपने को बहलाने। शत्रुघ्न अपलक दोनों बालकों को देखते रहे थे जब वो गा रहे थे राम कथा। ये शत्रुघ्न ही तो एकमात्र ऐसे रघुवंशी हैं जिन्होंने लव कुश को पहले से पहचान रखा है। मेरे राम, फिर वही बात, पहचान तो रखा है, जाना नहीं है अभी। कई बार ऐसा घटता है किसी से बात हो रही होती है, कोई संदर्भ आता है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ सुना तो है। क्या सुना है, इसके बाद उत्तर मौन हो जाता है। यही तो हमारे कमजोरी है कि हम दावा करते हैं कि हम जानते हैं, किसी व्यक्ति को जानते हैं या किसी घटना को जानते हैं, लेकिन जानने के साथ पहचानते कहाँ हैं। और जो जानने के साथ पहचान जाता है वही उत्कृष्टता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ जाता है। शत्रुघ्न बालकों को जानते तो पहचानते तो हैं, जानते नहीं है मेरे राम, जानते नहीं। और राम राम अपने काष्ठ शिविर में है और सोच रहे, स्वयं सोच नहीं रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, भाव स्वयं ही एक के बाद विचार बनकर के आते और जाते हैं। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम, वाल्मीकि का आश्रम यानी बिट्ठू कांड, और राम सीतापुर में गोमती के किनारे नैमिषारण्य, नैमिष नीमसार भी कहते हैं। बहुत लंबी दूरी नहीं है दोनों स्थानों के बीच। राम सोचते हैं कि दिवस भर की अधिकतम यात्रा में वो ब्रह्मावर्त पहुंच जाएं। राम का तन तो इस समय नैमिषारण्य में है, लेकिन मन ब्रह्मावर्त पहुंचा है। और राम का तन भी सीता के पास जाने के लिए मचल रहा है मेरे राम। देख, तन तन और मन के बीच में विवेक दीवार बना, विवेक दीवार बना हुआ है। रेशनैलिटी एज अ हार्ट, यहां राम रेडिकल नहीं हो पा रहे हैं। प्रिया के लिए राज्य और अपनी मर्यादा के परसोना को दांव पर नहीं लगा पा रहे हैं राम। क्यों क्यों? राम कर्मोत्तम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो चुके हैं। राम बनना तो कर्मोत्तम चाहते थे, लेकिन बन गए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। नियति की आहट को पहचान नहीं पाए यहां राम, इसलिए नियति के अधीन हो गए। राम अभी भी सीता की शुचिता और लोक मूल्यों को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ करके देख रहे, स्वयं दुख में है और सीता को दुख दे रहे, और लव कुश को भिक्षु का जीवन भेंट में दे दिया है चक्रवर्ती राम। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतना साहस नहीं कर पा रहे हैं कि सीता की शुचिता की स्वयं जिम्मेदारी ले और पूरे सम्मान के साथ सीता को प्रतिष्ठित कर सके। राम समाज और मर्यादा से भयाक्रांत हैं, डरे हुए। जब किसी मानव के मस्तिष्क पर कोई एक सिद्धांत हावी हो जाता है तो वो मानवीय मूल्यों को विस्मृत कर देता है। वास्तव में विस्मरण तो हो ही नहीं पाता मेरे राम। विस्मरण का भ्रम अपना आवरण बना लेता है राम। अंदर से सीता सहित है लेकिन प्रदर्शन सीता रहित होने का, मर्यादा के पर्दे के पीछे है राम और उस पर्दे के बाहर है चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम। राम स्वयं को नेपथ्य से बाहर नहीं ला पा रहे, पर्दे से बाहर नहीं ला पा रहे। आंसुओं ने राम को इतना भिगो दिया है कि भूमि काष्ठ कुटीर की भूमि भी गीली हो रही है। और तभी लक्ष्मण काष्ठ कुटीर के दरवाजे पर थप थप करते दस्तक देते। राम स्वयं को व्यवस्थित कर लक्ष्मण को आने के लिए कहते। लक्ष्मण बताते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से एक ब्रह्मचारी आए हैं और आपके लिए कोई संदेश लाए। ब्रह्मचारी को लक्ष्मण अंदर लाते हैं, बड़ा संक्षिप्त सा संदेश है। ऋषि वाल्मीकि ने भेजा है राम के लिए। वाल्मीकि ने कहलाया है कि सीता एक बार फिर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। राम अवाक रह जाते हैं राम, कारण कि वे स्वयं ऐसा ही संदेश अपने एक दूत के माध्यम से ऋषि को पहले ही भेज चुके हैं। राम अपना संदेश ब्रह्मचारी को भी देते। संदेशों का आदान प्रदान है। जो सीता ने सोचा है विठूर में और वाल्मीकि अपने मानस पिता को बताया है, वही राम ने भी सोचा, सीता भी वही सोच रही, राम भी वही सोच रहे हैं। यानी दोनों में समानता है, न कोई इतना बुरा है न कोई इतना ज्यादा भला है, भले और बुरे के बीच का अंतर ही मिट गया है। राम भी चाहते हैं सीता को साकार साक्षात कौशल राज्य की राज महिषी के रूप में, और सीता भी चाहती है राम को, और राम को चाहने के साथ सीता को प्रमाणित करना है अपने को कि वो कलंकिनी नहीं। राम से ज्यादा विचलन तो सीता के अंदर, राम तो अपना निर्णय देकर के हीरो हो गए, नायक हो गए। राम की तो प्रशंसा है, पुरुष जब स्त्री को प्रताड़ित करता है तो प्रशंसनीय हो जाता है, यह हमारी समाज की रीत चले आई। और स्त्री जो प्रताड़ित होती है पुरुष से, वो जो प्रताड़ित होती है वही कलंक का आधार भी बनती है। शास्त्रों ने कह दिया कि स्त्री तो क्षेत्र है, भूमि, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदल दिया उसको पौराणिकों ने। शास्त्र ने कहा स्त्री तो भूमि है, क्षेत्र है, इसलिए उसका कोई भी दोष किसी भी क्रिया में है ही नहीं। दोष है तो पुरुष का है कहीं, लेकिन मर्यादा ने क्या किया कि सारा दोष दे दिया स्त्री को और पुरुष को दोष मुक्त कर दिया। ये कैसी रीति बनी? और स्त्री को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ करके उसकी रक्षा की सारी जिम्मेदारी भी उसको दे दी और स्वयं हट करके पीछे खड़ा। मेरा राम, अगले एपिसोड में सीता आ रही है यज्ञशाला। हाँ, बड़े अलग से दृश्य होंगे सामने। जब सीता आएंगी यज्ञशाला में और सीता के अंदर की सीता भी आएगी साथ में। मानव है मेरे राम, मानव है।
भगत हे तू भगवान प्रभु, राम धरे वो तनु भू, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, प्राकृत नर अनुरूप।